है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज से हम योएल नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में पाई जाती है। इस पुस्तक के लेखक योएल नबी हैं और इसका मुख्य विषय है यहोवा का दिन। योएल नबी इसराइल के लोगों से आने वाले न्याय के संदर्भ में पश्चाताप करने का आग्रह करता है। वो विश्वासियों को उभारता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, जिनमें आने वाले छुटकारे तथा परमेश्वर के शत्रुओं के विनाश का निश्चय है। टिड्डियों के एक विशाल दल का आना और भयंकर अकाल का पड़ना, ये नबुवत का महत्वपूर्ण अंश है। तो श्रोताओ, आज के इस अध्ययन में हम सबसे पहले योएल नबी की पुस्तक का विस्तार से परिचय देखेंगे, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का भी, जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हम सब याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे थे, परंतु आज हम बाइबल में से भविष्यद्वक्ता योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। प्यार परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों आपने हम सबको याकूब की पत्री से अध्ययन करने का सौभाग्य दिया, हमें सिखाया, समझाया। और आज जब हम एक नए पुस्तक योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो आपका जीवित वचन हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। आप मुझसे भी बातें करें, मुझे भी सिखाएं, ताकि हम सब मिलकर आपके वचन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त करने पाए। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, या किसी न किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्यार प्रभु, आप उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, शांति और आनंद दें। आज के वचन के द्वारा सबसे बोले और बातचीत करें, हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में याकूब की पुस्तक से अध्ययन किया। अध्ययन के बाद आज हम योएल की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। योएल की पुस्तक में केवल 3 अध्याय हैं, अतः कोई यह सोचेगा कि यह भविष्यवाणी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यह छोटी सी पुस्तक परमाणु बम के समान है। यह बड़ी तो नहीं, परंतु सामर्थी और शक्तिशाली है। योएल के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, हमें उसके विषय में केवल अध्याय 1 पद 1 में ही जानकारी मिलता है। यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा, योएल का अर्थ है यहोवा परमेश्वर है। यह एक सामान्य नाम था। कुछ लोग कहते हैं कि योएल भविष्यद्वक्ता शामुएल का पुत्र था, क्योंकि पहला शामुएल 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब शामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इसराइल पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल था, परंतु आगे लिखा है, उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। इससे हम पहला शामुएल की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। अतः शामुएल का पुत्र भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता था। यह तो निश्चित है कि योएल यरूशलेम और यरूशलेम के परिवेश में भविष्यवाणी करता था। अपनी भविष्यवाणी में वह बार बार यहोवा के भवन का उल्लेख करता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं योएल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में, यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। योएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में वह यरूशलेम का उल्लेख करता है, यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। और योएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें फिर ना जाने पाएंगे। इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि योएल दक्षिणी राज्य यहूदा का भविष्यद्वक्ता था। योएल आरंभिक भविष्यद्वक्ताओं में से एक था। उस समय लगभग 50 भविष्यद्वक्ता थे और सामान्यतः अवधारणा यह है कि योएल राजा योआस के राज्यकाल में भविष्यवाणी कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एलिय्याह और एलिशा का समकालीन था और उन्हें जानता था। योएल का विषय है प्रभु का दिन। वह 5 बार इसका स्पष्ट संदर्भ देता है। योएल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 पद, 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद, 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद, 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद और 3 अध्याय उसके 14 से 16 पद। यशाया, यहर्मिया, यहेजकेल और दानियल भी प्रभु के दिन की चर्चा करते हैं। यदा कदा वे उस दिन को केवल उस दिन ही कहते हैं। जकर्याह विशेष बल देकर के कहता है उस दिन। उस दिन क्या है? यह प्रभु का दिन था, प्रभु का दिन है या यहोवा का दिन है। योएल पहला मनुष्य था जिसने भविष्यवाणी में प्रभु का दिन का परिचय दिया है। भविष्यवाणी के लिखने के समय की ऊंचाइयों से वह सदियों आगे तक देख रहा था, सबसे दूर, और उसने प्रभु के दिन को देखा। मेरे मित्रों, प्रभु का दिन प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर सहस्त्र वर्षीय राज्य में होगा, परंतु योएल अति स्पष्ट कहता है कि उसका आरंभ महाक्लेश के समय होगा। यदि आप प्रभु के दिन के अंत में कोष्ठ डालना चाहते हैं तो वह प्रभु राज के 1000 वर्षों बाद होगा, जब प्रभु यीशु संपूर्ण अधर्म का नाश करके इस पृथ्वी पर अपना अनंत राज्य स्थापित करेगा। प्रभु का दिन पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के विशेष अभिव्यक्ति थी। इसमें कलीसिया नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने कभी भी अन्य जातियों से बुलाए हुओं का उल्लेख नहीं किया है। यह एक देह प्रभु द्वारा उठा ली जाएगी। भविष्यद्वक्ताओं ने कलीसिया का कभी भी उल्लेख नहीं किया है। कृपया आप इसे ध्यान में रखें। यरूशलेम की महासभा के समय याकूब ने कलीसिया युग और इस युग अर्थात प्रभु के दिन के संबंध में व्यक्त किया था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लें। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। यहां पर इसके बाद का संदर्भ किससे है? किसके बाद? कलीसिया के उठाए जाने के बाद परमेश्वर फिर इसराइल के साथ अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा। यही प्रभु का दिन होगा। मेरे प्रियो, याकूब आगे कहता है 17 में, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। आज परमेश्वर अन्य जातियों में से अपने नाम के निमित्त एक लोग बुला रहा है। उस दिन सब अन्य जाति जो प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे वे प्रभु को खोजेंगे। मेरे विचार में उस दिन परमेश्वर की ओर फिरने का समय होगा, ऐसा समय जैसा कलीसिया ने कभी नहीं देखा है। अब कोई पूछे, परमेश्वर इस योजना के आधार पर क्यों चल रहा है? पत्रस प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मुझसे मत पूछो, परमेश्वर से ही पूछो। मैं उसके भेद को नहीं समझता। कोई भी मनुष्य उसके भेद को नहीं समझता है। वह अपनी योजना पूरी कर रहा है और यह जगत भी तो उसी का है। जी हाँ, वह हमें क्यों लेखा दे? आवश्यक नहीं कि वह हमें अपने काम की रिपोर्ट दे, लेखा दे। और हमारी प्रशंसा खोजे। मेरे मित्रों, यदि हमें उसके मार्ग पसंद नहीं है तो यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम तो अंततः इस पृथ्वी पर उसके सृजित प्राणी हैं। योएल की भविष्यवाणी की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। योएल पहला भविष्यवक्ता था जिसने भविष्यवाणी लिखना आरंभ की। वह सदियों पार प्रभु का दिन देख पाया था, परंतु मेरे विचार में वह कलीसिया को नहीं देख पाया था। प्रसंगवश किसी भी भविष्यवक्ता ने कलीसिया को नहीं देखा था। जैतून के पर्वत पर यीशु से पूछा गया था कि युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। उस समय प्रभु यीशु ने न तो अपने क्रूस का उल्लेख किया और न ही पवित्र आत्मा के अवतरण का उल्लेख किया था। उसने कलीसिया के युग और कलीसिया के उठाए जाने का भी उल्लेख नहीं किया था। इसकी अपेक्षा प्रभु यीशु के दिन का उल्लेख करता है। उसके द्वारा व्यक्त घटनाओं को वे ही देख पाएंगे जो उस समय वहां पर होंगे जब प्रभु के दिन का आगमन होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, यह प्रभु के दिन के आगमन का चिन्ह होगा। योएल स्पष्ट करता है कि वह रात के समय आएगा। रात का अर्थ है क्लेश का समय। दूसरी ओर इसराइल का दिन सूर्यास्त से आरंभ होता था। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा ही लिखा है, सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हम सूर्योदय से दिन आरंभ करते हैं, परंतु परमेश्वर सूर्यास्त से दिन आरंभ करता है। अतः प्रभु का दिन रात से आरंभ होता है। मेरे प्रियो, यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि होशे के विपरीत योएल अपने विषय कुछ नहीं कहता है। होशे की पत्नी के विश्वासघात का भी वर्णन है, परंतु योएल के विषय में तो हम यह भी नहीं जानते कि उसकी पत्नी थी या नहीं, और वह विश्वास योग्य थी या विश्वासघाती थी। भविष्यवाणी का पहला पद ही हमें उसके विषय में जानकारी देता है। बस यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। भविष्यवक्ताओं की नाई योएल इसराइल को मूर्ति पूजा के लिए नहीं फटकारता है, क्योंकि योएल के युग में वहां मूर्ति पूजा का पाप नहीं था। योएल केवल शराब के नशे के पाप का उल्लेख करता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए जो आप शराब पीते हैं। योएल की पुस्तक का आरंभ टिड्डियों की विपत्ति से आरंभ होता है, जिनकी उपमा द्वारा वह पृथ्वी पर पड़ने वाले भावी प्रकोप का उल्लेख करता है। पहला अध्याय एक नाटकीय एवं साहित्यिक नगीना है। यह धर्मशास्त्र का एक अद्भुत गद्यांश है जिसका जोड़ धर्मशास्त्र में अन्य कहीं भी नहीं है। अंत में योएल की भविष्यवाणी में एक विवादास्पद विषय है, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, जिसकी चर्चा प्रेरित पत्रस ने पेंतिकोस्त के दिन की थी। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की व्याख्याओं में अंतर है, जिसे हम आगे चल करके देखेंगे। तो आइए अब हम योएल की पुस्तक उसके एक अध्याय में आते हैं। इस अध्याय का विषय है टिड्डियों की विपत्ति, प्रभु के दिन की प्रतीक्षा। योएल की भविष्यवाणी के केवल 3 अध्याय हैं, वे भी संक्षेप में, परंतु धर्मशास्त्र में इसका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम भविष्यवाणी लेखक योएल प्रभु का दिन की चर्चा करने वाला भी पहला ही भविष्यवक्ता है। आइए हम देखें टिड्डियों की वास्तविक विपत्ति। योएल की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। कुछ लोगों का कहना है कि योएल शामुएल भविष्यद्वक्ता का पुत्र था, और इसके बारे में वे कहते हैं पहला शामुएल 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, परंतु शामुएल के पुत्र अनर्थकारी थे, अतः यह योएल उसका पुत्र कभी नहीं था। उसका पिता पतुएल था। योएल का नाम का अर्थ है यहोवा परमेश्वर है। तब हम आगे पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे पुर्नियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? इस समय इसराइल पर टिड्डियों की विपत्ति आई हुई थी, जो वहां की एक आम दुर्घटना थी, परंतु योएल वृद्धों को पुकार करके कहता है, हे पुर्नियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? निसंदेह वे कहते, नहीं, यह सबसे अधिक भयानक है। हमारे साथ समस्या यह है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब अतीत को हम भूल जाते हैं, या हम यूं कहें कि हम अच्छे दिनों को ही याद करते हैं। यदि कोई युवक आकर कहे कि उन्होंने बहुत अच्छी जागृति की सभा की, तो हम कहते हैं यह तो वास्तव में प्रशंसनीय है, परंतु हमारे शहर में तो कभी बहुत ही अच्छी सभाएं होती थी, इससे भी कई गुना अच्छी। तब योएल कहता है, तुम प्राचीनों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, और वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। तब वह आगे कहता है योएल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में, अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, योएल कहता है कि तुम लोग अपने बच्चों को बताना और तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि ऐसी विपत्ति फिर कभी नहीं आएगी। आपको धर्मशास्त्र में ऐसी कोई और अभिव्यक्ति स्मरण है? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा था, ना तो ऐसा पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा, अर्थात महाक्लेश जैसा। यह युग इतिहास में एक विशेष काल होगा। उस समय कोई वृद्ध यह नहीं कहेगा, इससे मुझे अपनी जवानी का वह समय स्मरण आता है। मेरे प्रियो, इतिहास अपने आप को दोहराता है, घटनाओं का पुनः उदय होता है, या वैसी ही घटनाएं फिर घटती हैं। परंतु महाक्लेश के समय के लिए प्रभु यीशु कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 पद में, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। उस समय यह सुनने में नहीं आएगा। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं कि यह महाक्लेश क्या है? यह महाविपत्ति क्या है? इसका उत्तर बहुत आसान है, यदि हम प्रभु यीशु के शब्दों पर ध्यान दें, ऐसा जगत के आरंभ से न तो हुआ है और न कभी होगा। जिस तरह स्थिति बिगड़ती जा रही है, हम नहीं कह सकते कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। योएल बड़ी नाटकीय शैली में कहता है, देखो यह टिड्डियों की विपत्ति बेजोड़ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, परंतु एक और अद्वितीय घटना घटने जा रही है, प्रभु का दिन। उस दिन का आरंभ कलीसिया के उठाए जाने के बाद महाक्लेश से आरंभ होगा। वह पृथ्वी का सबसे भयानक समय होगा, जो वर्णन से भी परे भयानक होगा। तब प्रभु यीशु आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। काश वे लोग जो इसका इनकार करते हैं, बाइबल पढ़ें, एक दो पद यहां वहां से निकाल कर निर्णय ना लें। हमें वचन को पूरी तरह से पढ़ना है, हमें सीखना है ताकि हम जानने पाए कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, आगे हम देख रहे हैं, टिड्डियों की यह विपत्ति सबसे अलग थी। मूसा के युग में मिस्र पर आने वाली टिड्डियों की विपत्ति तो परमेश्वर का चमत्कार था, परमेश्वर का दंड था, परंतु यह एक प्राकृतिक आपदा थी। हम टिड्डियों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हमें उनके विषय में जानना आवश्यक है। जब मैं छोटा था तब बिस्तर में लेटकर खिड़की से टिड्डियों की आवाज सुना करता था। वे पेड़ों पर रहती थी, वे विपत्ति तो नहीं थी और न ही इसराइल की टिड्डियों की जाति की थी। यदि आप टिड्डियों द्वारा खाए गए किसी खेत को देखें तो ऐसा लगता है कि वह आग से जल गया है। परमेश्वर का वचन टिड्डियों के बारे में चर्चा करता है। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय उसके 27 पद को देखिए। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती हैं। वे एक सेना के समान चलती हैं। उनके अलग अलग जत्थे होते हैं। अब हम योएल के युग में टिड्डियों के विषय में कुछ समझ सकते हैं कि वे किस प्रकार से आक्रमण करते थे। मेरे प्रियो, यह योएल की पुस्तक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है कि हम उस दिन के बारे में जान जाएं कि परमेश्वर किस प्रकार से इस संसार का अंत करने जा रहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि यदि आपके पास बाइबल है तो आप अवश्य पढ़ें, यदि नहीं है तो आप खरीद लें ताकि परमेश्वर की वचन की सत्यता को आप सही रीति से जानने पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही प्रभु के दिन के बारे में जाना है। अगले अध्ययन में हम और भी अधिक इसके बारे में सीखेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, प्रभु की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in।
तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम,
Oh, oh, oh.
जब मैं